Ladies and gentlemen, good day and welcome to Accuracy Shipping Limited conference call to discuss the financial results of the company for the year ended 31st March 2018. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Shaheena Mukadam, Head ValueWise Investor Relations. Thank you, and over to you.
Hello.
Good morning, friends. This is Shaheena, your host for this afternoon's conference call of Accuracy Shipping Limited. We are here to discuss the financials for the 12 months ended FY 2017-18. The detailed results have already been shared with you, and to discuss the same, we have with us today Mr. Vinay Tripathi, the CMD, and Mr. Hiren Sukhwani, CFO. As this is our first call post-IPO, I will request first Mr. Vinay ji to share his thoughts and briefly take us through the business of the company. Subsequently, I would request CFO Mr. Hiren Sukhwani to take us through the result highlights. We will then throw open the floor for Q&A. With this, I request Mr. Vinay ji, please.
Yes, good evening. Good evening, Shaheena, and good evening, all team. Myself, Mr. Vinay Tripathi from Accuracy Shipping Private Limited. Accuracy Shipping Private Limited has started 2008 in corporation and now listed in 22 June and with the fund of 41.5 crores and the acquisition of the first amounts like purchase of goods transport vehicles 5.16 and working capital 15 and other for the repayment of the loans and all. Then company have 118 plus and 163 trucks and fleet drivers, and company have 14 branches all over India. Basically, company involved in door-to-door business, logistics providing, pickup from the locations origin and the custom clearance at loading, then move the cargo on in the containers through sea and destinations to Indian different ports like Mundra, Kandla, Hazira, Chennai, Nhava Sheva, Kolkata, and Pipavav. And then discuss the goods and deliver to the again custom clearance and deliver to the customer's warehouse. This is a company specialty to handling the maximum business of entire turnover 60% more or less or 70% approximately. In company involved service offered freight forwarding, custom clearance, warehousing, and transportation. And the more or less the maximum part is coming from custom clearance and freight forwarding, which is more or less 73-74%, and balance rest coming from the transportation part. And company handling more movement like volume of the trade industry, 33,300 volumes of 15 and 16, 44,000-46,000 around 16-17, and something 17 and 18 approximately 50,000-57,000 containers we have handled. Company's core business, marble and ceramic tile and granite. But we had diversified last 3-4 years in yarn, paper, scraps, many more commodity foodstuffs, and now we reach on this level near about 60-70%. And APEX, like we have fleet management, maximum containers we are moving on our trucks. We are giving a door-to-door services, and other way we provide the service to our clients. We have major clients like RK Marble, Kajaria, Varmora, Johnson & Johnson, Irwin Textiles Company, like many more we have, but whichever I have remembered, I told you now. Company locations and network presence, like my company have 32 country overseas partners which is working more or less 2 to 3 years, or some partners 7 to 9 years old. My partners, strategic partners. I mean, in last February, we win an Indian subcontinent award, Indian subcontinent award, and Indian subcontinent award हमको मिला, and उसमें 67 MU हमने नए sign किए हैं, 67 MU हमने नए sign किए हैं, जो अभी कंपनी को और भी ग्रोथ की तरफ सपोर्ट करेंगे, और भी कंपनी को ग्रोथ की तरफ सपोर्ट करेंगे, and under finalization is going on. Then I'm handling to my CFO, who will be handled for the financial and all, and we will discuss with you about the financial and other.
Hello, good evening to all. As you can see, we have achieved the target of 333 crores for the financial year 2018, and our EBITDA is stood at 30 CR. Jisme se interest component hai 3.40 CR, and depreciation is 7.81. Hamara PBT jo hai wo 15 crore ke approx rehta hai aaju baaju, jisme se hamara PAT rahega 10.37. ये हमारा जो टारगेट हमने अचीव किया है, ये बेसिकली एक पॉलिसी के कारण आया है, जो हमारा स्पेशल कमोडिटी है, जो हमारा कोर कमोडिटी है मार्बल, उसमें एक चेंज आया था 2015-16 लास्ट क्वार्टर में, दैट गवर्नमेंट ने वो पूरा पॉलिसी जो मार्बल रेस्ट्रिक्टेड कमोडिटी में आता था उसको ओजीएल कर दिया था, ओपन जनरलाइजेशन. नाउ एवरीबडी कैन इम्पोर्ट मार्बल एज मच एज दे वॉन्ट. कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, जो पहले रेस्ट्रिक्शन था एक लिमिट तक, एक सर्टन अमाउंट तक ही, एक सर्टन क्वांटिटी तक ही आप मार्बल इम्पोर्ट कर सकते थे, जो कि हमारा कोर कमोडिटी है, जिसने हमको बेनिफिट किया ये टर्नओवर अचीव करने में. और फिर कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है अपने कमोडिटीज को, जैसे कि हमने एड ऑन किया टाइल्स, सिरामिक मार्केट, यान, पेपर, एग्री प्रोडक्ट्स, कॉटन, ये सब हम एड ऑन करते गए, जिसने हमको काफी सपोर्ट किया ये टर्नओवर अचीव करने. और इसी से ही हमारा जो ईपीएस रहा है इस साल का, वो रहा है 10.81. हमारा जो जो मेजर रिवेन्यू आता है वो आता है मार्बल सेक्टर में से, विच इज नियरली अराउंड 50 to 55%. 30 to 35% कम्स फ्रॉम टाइल्स इंडस्ट्री, सिरामिक एंड टाइल्स इंडस्ट्री, एंड रेस्ट टू ऑल अदर कमोडिटीज लाइक पेपर, यान एंड एग्री प्रोडक्ट्स. हमारा जो सिक्योर लोन है वो है 27 CR, जो कि अगेंस्ट हमारे फ्लीट के ही है, और इसके अलावा और कोई लोन किसी चीज का नहीं दिया हुआ है. और हमारा जो कैश क्रेडिट लिमिट है फ्रॉम अवर बैंकर इज 15 CR, जो कि हम एंजॉय कर रहे हैं अपने बुक्स के अगेंस्ट में. मोर देन दिस, हमारे जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी इम्प्रूव होता गया है. लाइक फाइनेंशियल ईयर 2018 में वो था 2:1, और अभी जो है वो 0.40 पे पहुंच गया है, जो करंट रेशियो 19 के लिए है. एंड वी आर टारगेटिंग 430 करोड़ अप्रोक्सीमेटली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019, एंड द इबिटा फॉर द सेम विल बी अराउंड 40 CR. And the PBT will be around 21 CR, and the PAT will be around 15 to 16 CR. So that is all our target for the financial 19, and the brief summary of financial 18.
Thank you very much, Hiren. Let me hand the floor over to the moderator to take the Q&A forward.
Sure.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may please press star then 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star then 2. An operator will take your name and announce your turn in the question queue. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. To ask a question, please press star, then one. The first question is from the line of Varinder from Pantomath. Please go ahead.
Okay, two questions from...
this is Varinder and Vineet, if you decide. Hello.
Yes, sir.
ओके एक तो ये चीज समझा दीजिए हमें ये जो ओजीएल पॉलिसी जब आया सो आपने बोला कि जो नंबर्स अच्छे हैं ओजीएल के कारण आए राइट तो आगे जाके व्हाट आर द बेनिफिट्स यू आर सीकिंग फ्रॉम द ओजीएल कितना वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी बाकी है फ्रॉम द ओजीएल पॉलिसी एंड दिस ओजीएल पॉलिसी विल हेल्प अस फॉर हाउ मेनी मोर इयर्स गोइंग अहेड
मार्वल है ओजीएल जैसे सर 2015 एंड 16 में ओजीएल हुआ ओजीएल से पहले क्या रहता था रिस्ट्रिक्शन कमोडिटी होने के चलते एक कोटा सिस्टम था एंड इट ओनली सेवन एंड हाफ लेख मेट्रिक टन कार्गो इम्पोर्ट आ सकता था जो इंडिया की कैपेसिटी जो है वो नियरली 15 से 20 लाख टन की है अभी भी जो इंडिया में इम्पोर्ट आ रहा है एज ऑफ नाउ जो अभी तक इम्पोर्ट आ रहा है वो 12 से 13 लाख टन ही आ रहा है जो अभी भी स्कोप 6 से 7 लाख टन इम्पोर्ट का स्कोप है एंड जैसे कि अब पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया इज लार्जेस्ट जो है ग्रोइंग कंट्री बन रहा है चाइना के बाद तो अभी इंडिया में बहुत कंस्ट्रक्शन काफी चीज बाकी है तो मार्बल का स्कोप नेक्स्ट जो एज इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट है और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हमको मालूम पड़ता है ओके उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स इंडिया का स्कोप है वो फुल प्लेस ओपन है तो ये ग्रोथ होना ही होना है सर इसमें कहीं कोई रुकना नहीं है इवन रिस्ट्रिक्शन होने के बाद ओजीएल पॉलिसी बनने के बाद पूरा ग्रोथ खुल जाता है खुल गया ओजीएल
तो आपके हिसाब से आगे जाके आपका ग्रोथ जो है ओजीएल से कितना वॉल्यूम हम लोग मान सकते हैं
सर
या फिर परसेंटेज ग्रोथ में कितना हो सकता है
सर मान लीजिए ना कि जो ग्रोथ अभी मेरा मार्बल का एग्जाम्पल मार्केट एक होल्ड है 70% or 75% ये ग्रोथ जो है 85-90 जाने की कुछ चांसेस है क्योंकि इसमें एक्सपांशन डे बाई डे कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसे गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ आयुष मित्तल फ्रॉम मित्तल एंड कंपनी प्लीज गो अहेड
गुड आफ्टरनून सर सर इट्स वेरी इम्प्रेसिव टू सी द ग्रोथ अचीव बाय द कंपनी ओवर लास्ट 3-4 years कैन यू टेक अस थ्रू द रीजन आप हम लोग को इसकी रीजन मतलब क्योंकि फ्रॉम आउटसाइड इट सीम्स टू बी अ वेरी कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री
राइट सर एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट मेरे इंट्रोडक्शन बताया कि एक्यूरेसी जो है 3PL है 3PL नॉर्मली लोग 3PL ही समझते बट 3PL में कैसा है सर मैं आपको बताऊँ की मेरा जो यूनिकनेस है इस कंपनी का ये क्या है कि जो मेरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर 32 कंट्री जो पुराने हैं वो ऑलरेडी इस मार्बल कमोडिटी में मोर देन डिकेड है मेरे ज्यादा टाइम से लोग इन्वॉल्व है इस कम्युनिटी में सो उससे क्या है कि जो कार्गो है हमको एक अपॉर्चुनिटी मतलब डोर टू डोर डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में बहुत फ्यू लोगों के पास में है इसीलिए हमारे पास में जो यूनिकनेस है और जो टर्न ओवर या जो सपोर्ट मिलता गया आज सर हर कंपनी चाहे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर पर जाके मिलते हैं तो अगर हम उससे बोलता हूँ कि मैं आपका कार्गो आपके फैक्ट्री से उठा करके आपके बायर के पोर्ट तक और आपके बायर के गोडाउन फैक्ट्री तक छोड़ दूंगा तो एक मिनट की जब सोच के लगता है कि ओके यार ओके एक बंदे को काम दे दो एंड रिलैक्स हो जाओ एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे अरविंद मिल है अहमदाबाद में, जब हमने अरविंद मिल को बोला कि हम आपका 300-400 कंटेनर पूरा आपकी फैक्ट्री से ही उठा लेंगे रॉ मटेरियल और फिनिश आइटम, और मैं आपके इजिप्ट के बायर के घर तक छोड़ के आऊंगा, वेयर हाउस और ऑफिस तक छोड़ के आऊंगा, फैक्ट्री तक छोड़ के आऊंगा, दे टोटली रिलैक्स एंड दे गिव फुल मूवमेंट। अब मान लीजिए जो दूसरे जो सीपीए दूसरे जो फॉरवर्ड्स और सीएसए हैं या ट्रांसपोर्टर ओनली है, वो लोगों के पास में तीनों सर्विस नहीं है, और तीनों एक्यूपाइड सर्विस होना इम्पोर्टेंट है, और तीनों एक्यूपाइड हुआ सर्विस इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरे पास में खुद की ट्रक है, खुद के ही कस्टम हाउस क्लियरेंस है, खुद के ही सीएसएस है, खुद की फ्रेट फोर्डिंग डीएल है, खुद का एनरोल सीटी है, तो सारे डिवीजन मेरे खुद के बने हुए हैं। इसके चलते क्या हो जाता है, हमको एक कॉम्पिटिटिव कॉस्ट भी मिल जाती है, रेवेन्यू भी मिल जाता है, और टर्नओवर भी मिल जाता है, तीनों मिल जाता है, और कस्टमर को एक ही पॉइंट कॉल हो जाता है। आने वाला टाइम इन फ्यूचर जो है, इन फ्यूचर जो इंडिया का भी डोर टू डोर कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये सर्विस हुआ 3PL डोर टू डोर और एक्सवर्स सर्विस जो बोलते हैं, ये बेसिकली बहुत फेमस है यूरोप में, चाइना में बहुत फेमस है, अफ्रीका में नहीं है इतना, बट यूरोप एंड चाइना में फुली फेमस है डोर टू डोर कॉन्सेप्ट। वहां पर डोर टू डोर ही मैक्सिमम बिजनेस चलता है, अगर आप ओनली फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं यू कैन नॉट सर्वाइव। दिस इज आवर कोर मूवमेंट ऑफ आवर कंपनी सर।
बट सर जो अदर कॉम्पिटिटर्स एंड 3PL में दे हैव टाइप्स, मतलब उनके तो क्या होता है कि वो ये पार्ट कर रहे हैं बट जो बाकी लॉजिस्टिक पार्ट है वो दूसरे से मैनेज करा लेते हैं।
जी
मतलब ये सॉल्यूशन तो था ही, मतलब अभी आप इंटीग्रेटेड दे रहे हैं बट ये सॉल्यूशन तो पूरा अवेलेबल ही है मार्केट में।
सर इसमें बताऊं, जैसे मान लीजिए 2001 में जब हमारा करियर स्टार्ट हुआ था शिपिंग कंपनी के एज ए सीएचए, तो मैं एज ए सीएचए था ओनली, नॉट फ्रेट फॉरवर्डर नॉट ट्रांसपोर्टर। तो उस टाइम पे मैं ये जो सर्विस है मैं किसी थर्ड एजेंसी से सर्विस देता था और उसके बाद मेरे कस्टमर को देता था सर्विस, बट उस पर्टिकुलर सर्विस देने में, ठीक है ना, लेकर सर्विस देने में ना तो मैं कॉस्ट इफेक्टिव हो पाता था और ना मैं वो सर्विस टाइम पे दे पा रहा था। एग्जाम्पल आज मैंने अरविंद मिल को बोला भाई चल आपके फैक्ट्री पे मेरी 5 गाड़ी देगी, मैंने अदानी की फैक्ट्री बोला मेरी 10 गाड़ी कल खड़ी रहेगी, तो अदानी के फैक्ट्री पे कल 10 गाड़ी खड़ी है क्योंकि मुझे किसी को डिपेंडेंट नहीं रहना है, टेंशन लेने की नॉट अवेलेबल है, अवेलेबल तो सब कुछ है बट वो अवेलेबल के साथ में जो सर्विस दे पाना है, क्योंकि आज भी अपने इंडिया में बोलते हैं सर मैं आपको 5 बजे पहुंचूंगा, बस पहुंचते कितना बजे, 5:10, 5:20, 5:30 और 6 बजे पहुंचेंगे आप, बोलेंगे सर रास्ते में ट्रैफिक जाम था, बारिश हो रही थी, मैं लेट पहुंचा। तो अभी इंडिया में पंक्चुअलिटी नाम की जो चीज है उसकी बहुत लैक्स है, तो ये लेकिन जो एक्यूरेसी के मॉडल में जो 3PL में है वो लैब को मैंने खत्म कर दिया है। मैंने कहा कि आपकी फैक्ट्री सुबह 10 बजे गाड़ी पहुंचेगी तो 10-11 बजे उस स्टॉपिंग का टाइम आपका है, वो स्टॉपिंग टाइम पे आपको गाड़ी मिल जाती है लोडिंग टाइम पे।
एंड सर ये जो मार्जिन अपने एक्सपैंड हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है देन दी रेवेन्यू, ये क्यों हो रहा है एंड हाउ सस्टेनेबल इज दिस?
सर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं ओनली सीएसई पार्ट होता, ओनली सीएसई पार्ट होता या ओनली ट्रांसपोर्टेशन पार्ट होता या ओनली फ्रेट फॉरवर्डिंग पार्ट होता, तो शायद अभी जो पैट है लास्ट जो प्रॉफिट का रेशियो है वो टोटल टर्नओवर का 1% या 2% या 2.5% या 3% से ऊपर जाना भारी हो जाता। बट जैसे मैं बन गया टोटली सीएसए ट्रांसपोर्टर फ्रेट फॉरवर्डर, तो एक्यूमुलेटेड होकर के अगर ईच बिजनेस का अगर आप 1.5% 2% भी गिनेंगे तो भी 6-7% तो घूम करके हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, एनी मोर क्वेश्चन सर?
सर सो अगर मैं कंपेरेबल प्लेयर देखूं तो जैसे टाइगर लॉजिस्टिक जो लिस्टेड है उसकी सर्विसेज जो वो ऑफर करते हैं, आपकी इसमें कोई डिफरेंशिएशन है?
सर टाइगर लॉजिस्टिक जो है, टाइगर लॉजिस्टिक गुड कंपनी नो डाउट, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, एवरी कंपनी इज गुड, लेकिन टाइगर लॉजिस्टिक का पहले ये देखना पड़ेगा तो ओन इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। 3PL वेबसाइट पे लिखना, 2PL वेबसाइट पे लिखना, वो 3PL 2PL नहीं होता। जैसे 3PL 2PL लिखने से बेटर होता है कि जो रियलिटी में कितनी गाड़ियां हमारी खुद के बुक्स पे हैं, कितने हाउस में जी कार्ड पास किए हुए लड़के मेरे कंपनी कितने नौकरी कर रहे हैं, जैसे आज मेरे पास में 6 जी कार्ड होल्डर्स गाइड आर वर्किंग, अलग अलग ब्रांड होके जो तत्सम का काम देखते हैं, जैसे मुद्रा में दो है, पिपावा में एक है, हजीरा में एक है, चेन्नई में दो है, ठीक है ना, तो मतलब कस्टम हाउस के लिए जो काम करते हैं ऑथराइज गाइड, वो लोग भी ऑथराइज होते हैं साइन करने के लिए मेरे बिहाफ में कस्टम के डॉक्यूमेंट सारे। वैसे देखना पड़ेगा कि भाई टाइगर उसकी 3PL बोल रहा है, पर 3PL में कहाँ पे उसके पास में वो है कि जो प्रोवाइड कर पाएगा सर्विस। अब सर ये टाइगर लॉजिस्टिक्स ने दिखाया कि फॉर एग्जाम्पल हम टाइगर लॉजिस्टिक्स है तो मैं बहुत सारी मीटिंग किया था टाइगर लॉजिस्टिक्स की बात हो रही थी, आज 153 ट्रक है लिस्टिंग जो है खुद की कंपनी के ओन, वहीं पे जैसे टाइगर है 25 है, तो 25 में और 153 में सर्विस देने में बहुत फर्क पड़ जाएगा ना।
ओके सर, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू,
थैंक यू। The next question is from the line of Darshit Shah from Nirvana Capital. Please go ahead.
Hi, sir. My question is for Mr. Hiren.
Yeah.
Sir, if I look at the financials, you know, this year we have done quite well, you know, whereas our PBT and PAT both have gone up almost by 7-8x.
Yeah.
But sir, when I look at cash flow statement, can you explain why is that there is no tax being paid shown in the cash flow statement?
Sorry sir, I didn't get you. क्या बोल रहे हैं आप?
हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आपके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है which you have given in the results, उसमें जो टैक्स पे किया है वो क्यों बता नहीं रहा?
सर वो बता नहीं रहा है क्योंकि हमारा जो TDS पोर्शन होता है वो हमारे टैक्स पेमेंट की जो लाइबिलिटी होती है उससे ज्यादा होता है, तो हमारा ऑलवेज रिफंड आता है।
अच्छा,
हाँ, तो इसीलिए वो कैश अक्रूवल में नहीं है तो फिर वो कैश फ्लो में नहीं इफेक्ट करेगा वो। सर तभी आपने जैसे आपको 17 का नहीं दिखा रहा होगा इसीलिए शायद आपका ये क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन इसीलिए है सर आपका क्योंकि जो हम पेमेंट जो हमारा जो टैक्स पेमेंट होता है वो हमारे TDS के अमाउंट में से ही पेमेंट हो जाता है एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट कम्स एज अ रिफंड टू अस।
ओके, सो यू मीन टू से दैट ये साल का 4.7 करोड़ जो अपना टैक्स करंट टैक्स था जो PNL में है?
एग्जैक्टली,
हाँ, तो वो उससे ज्यादा TDS कट हो गया है,
उससे ज्यादा अपना TDS डिडक्शन में है जो अपन ने अपने क्लाइंट ने अपने डिडक्शन किए हुए TDS से।
ओके, एंड वो कहाँ दिख रहा है बैलेंस शीट या उसमें?
सर वो आपको जो रिसीवेबल दिखेगा वो आपको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखेगा अगर बैलेंस शीट आपके हाथ में है तो।
ओके,
उसमें आप शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा हमारा वो फंड जो हमारा रिसीवेबल है
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में।
यस,
ओके, और माय सेकंड क्वेश्चन इज के अगर आप बैलेंस शीट देखो जिसमें दिस शॉर्ट टर्म प्रोविजन है जो मेनली टैक्स प्रोविजन है
जी,
सो दैट इज गॉन अप फ्रॉम 4.39 करोड़ इन FY17 टू 5.44 करोड़ इन FY18, सो दैट इज ऑलमोस्ट अप बाय 1.05 करोड़
जी।
और वही चीज आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखो तो द चेंज इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज शोन डिक्रीज ऑफ 3.64 करोड़, तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है आप मुझे समझा
सकते? डिस्क्रिपेंसी नहीं है एक्चुअली, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो किए हुए हैं लायबिलिटी के तो आप देख रहे हैं सर, उसमें ऐसा है कि वो प्रोविजन भी किए हुए हैं, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो वो पेमेंट हुए हैं नेक्स्ट ईयर में जो आपको वो फ्लो में नहीं दिखता है। हेलो,
यस,
जो आपको वो कैश फ्लो में नहीं दिख रहा है सर क्योंकि वो प्रोविजन किए हुए हैं, प्रोविजन वही होते हैं जो आपका पेमेंट नहीं किया हुआ है बट आपने उसको अक्रूड कर दिया है ऐसा है, तो वो कैश फ्लो में जो आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा है वो इसीलिए नहीं दिख रहा है, जब वो पे होगा तो वो जो आपको नेगेटिव फिगर दिख रहा है वो आपको पॉजिटिव में दिखेगा और कैश फ्लो में इम्पैक्ट दिखाएगा उसका।
हाँ, वो तो मैं समझ गया, बैलेंस शीट में आप देखो तो वो 4.39 करोड़ से 5.44 करोड़ बता रहा है, सो दैट शोज एन इंक्रीज ऑफ 1.05 करोड़,
बिल्कुल,
दैट सेम 1.05 करोड़ शुड शो इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल, राइट?
बिल्कुल,
हाँ, तो 1.05 के बदले आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3.64 करोड़ का डिक्रीज बता रहा है।
बस सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो इंक्रीज हुआ है वो मेरा पेमेंट हुआ है नेक्स्ट ईयर में, वो उसी ईयर में पेमेंट नहीं हुआ है मेरा, तो जो कैश फ्लो में आपको जो नहीं दिखा रहा है जो आप बोल रहे हैं जो डिक्रीज हुआ है, वर्किंग कैपिटल जो हमारा जैसे लिक्विडिटी हमारी जो बड़ी है ना सर, उस वजह से अल्टीमेटली आपको कम दिखा रहा है, जो मेरे फंड रेज हुए हैं उस वजह से आपको वो कम दिखा रहा है।
अच्छा
Let's take this offline. Can I request Hiren to provide the answer, and Dishit will get back to you on this on a one-to-one basis?
Definitely, ma'am.
That's okay.
Thank you.
Thank you.
The next question is from the line of Vikram Suryavanshi from PhillipCapital. Please go ahead.
Hi sir, good evening. Sir, I want to know what would be the impact of this जो एक्सेल लोड जो अभी बढ़ाया है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, उसका अपने लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा? और दूसरा, जो डायरेक्ट को डिलीवरी है JNPT में वगैरह, उससे कितना अपना कॉस्ट कम हो रहा है या वो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्या?
हेलो सर, एक्चुअली जो डायरेक्ट जो आप बोल रहे हैं ना, लोड कैपेसिटी बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली अभी तक ऐसा पॉलिसी आया नहीं है। वो पॉलिसी डिस्कशन पॉइंट पे है, जिसको आने में अभी और टाइम लगेगा। अगर वो आ जाता है सर, तो ऑब्वियसली जो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगा, क्योंकि इससे आप सेम गाड़ी में जो पहले मैं 27 मेट्रिक टन जो लेके जा रहा था, मैं 27 टन का कार्गो लोड करके जा रहा था, अगर 20% वो बढ़ जाता है तो मेरा कार्गो 32% लोड होगा। तो ऑब्वियसली मैं जो कमोडिटी है वो ज्यादा लेके जा रहा हूँ, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी मेरे को ज्यादा मिलेगा।
ओके, बट बहुत सारे लोग बोल रहे कि रोड कंडीशन इतना जितना बोल रहे उतना ठीक नहीं है, या वो गाड़ी का अगर ब्रेक सिस्टम ये सर, तो एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ जाएंगे राधा ध्यान, मतलब तो वो कितना हद तक सही है, मतलब जो फेयर है लोगों के मन में?
ये चीज सही नहीं है सर, क्योंकि एक्चुअली में जो गाड़ी का कैपेसिटी है वो 39 टन होता है। अगर आप देखेंगे पर एक्सल 13 टन होता है और 3 एक्सल लगता है, तो 39 टन उसका कैपेसिटी होता है, तो इतना कैपेसिटी इजीली लेके जा सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है 27 टन तक, तो इसीलिए अभी तक जो चल रहा था वो 27 टन तक ही चल रहा था। अभी भी वो लोग फुल कैपेसिटी पर नहीं बढ़ा रहे हैं सर, वो सिर्फ 20% बढ़ा रहे हैं, 22-25% जो कि प्रपोज किया गया है। तो थर्टी टू टन एक गाड़ी इजीली लेके जा सकती है सर। कितनी बार सर ऐसे होता है, आपका कमोडिटी एक ओवरवेट में आता है, तो आप उसको ओवरवेट चार्जेस भर के लेके ही जाते हैं, हम लोग भी करते ही हैं, तो कस्टमर ओवरवेट चार्जेस भर भी देता है, तो दैट इज इजीली, मतलब वो ट्रैकेबल है सर, उसको लेके जा सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। और रोड तो सर अभी तो उल्टा इम्प्रूव हो रहे हैं, अभी तो रोड इम्प्रूव हो रहे हैं, आपका गाड़ियां जो आ रही है वो लेटेस्ट DS4 आ रही है, तो उनसे आपका माइलेज बढ़ रहा है, आपको फास्टैग फैसिलिटी मिल रही है, तो जो आपका होल्डिंग पीरियड था टोल टैक्स वगैरह पे वो भी अभी बहुत कम हो गया है। तो ये सब पॉलिसीज की वजह से सर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है।
राइट राइट, और अभी कांडला में भी कंटेनर फैसिलिटीज वगैरह हो गया है डेवलप, तो उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, या अभी भी काफी सारा माल मुंद्रा और JNPT में जा रहा है?
सर मेजर पोर्ट जो हमारा हम लोग जो सर्व कर रहे हैं वो मुंद्रा से ही है, एक्चुअली मेरा 50-60% आ रहा है, और कंडला से भी इवन सर हम करते ही हैं, क्योंकि मेरा जो मैं बेस्ड आउट हूँ वो कंडला के बाजू में ही हूँ। एक्चुअली मेरा ऑफिस जो है वो सर उसको 3 पोर्ट नियर बाय है, टूना पोर्ट, कंडला पोर्ट एंड मुंद्रा पोर्ट। तो अभी तक कंडला पोर्ट से फुल पैक उतना वॉल्यूम नहीं आ रहा है जितना मुंद्रा पोर्ट से आ रहा है, बट ये जितना वॉल्यूम आ रहा है उसमें से कुछ वॉल्यूम हम भी क्लियर कर रहे हैं। अच्छा है,
ओके। और जो लास्ट क्वेश्चन सर, जो डायरेक्ट कोर डिलीवरी से कुछ कॉस्ट सेविंग हो रहा है क्या अपना, ये अभी भी मतलब हम CFS के थ्रू ये रूट कर रहे हैं?
नहीं सर, अभी तक डायरेक्ट पोस्ट, ये जो डायरेक्ट कोर डिलीवरी आप बोल रहे हैं ना, ये सब अभी एक्टिवली इतना चालू नहीं हुआ है, इसको अभी और चालू होने में सर प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जस्ट एक नोटिफिकेशन डालने से सर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोर्ट पे इतना कंजेशन रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है कि उसको डायरेक्ट डिलीवरी देना पोर्ट के लिए ही पॉसिबल नहीं है। तो मतलब काफी अभी इसमें टाइम लगेगा सर, अभी वो पॉलिसी इतना एक्टिव नहीं है जो आप बोल रहे हैं।
ओके ओके, थैंक यू सर,
थैंक यू सो मच।
थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स हु वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस प्लीज प्रेस स्टार देन 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ आनंद जैन फ्रॉम 9 ब्लू, प्लीज गो अहेड।
हेलो।
हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग सर, मैं ये बोलना पूछना चाहता था कि जो लास्ट ईयर में जो सडन मासिव प्रॉफिट राइज हुए हैं कंपनी के, तो कंपनी ने कुछ एडिशनल कुछ क्लाइंट्स को ऐड किया है इस ईयर में, तो उसकी वजह से आने वाले टाइम में भी उसमें प्रॉफिट मिलेगा, उसका क्या रहेगा? एंड सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा कि ऑयल के प्राइसेस जैसे कि अप होते जा रहे हैं एंड आगे जो फ्यूचर में रहेगा, तो कंपनी क्या हेज कर रही है ऑयल प्राइसेस को लेके, उसके बारे में मैनेजमेंट का क्या रिव्यू है?
सर पहले तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, जो आपको ग्रोथ आप बोल रहे हैं, जो आपका ग्रोथ कंसर्न है कि प्रॉफिट वगैरह कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो सर आप देखेंगे तो FY17 में मेरे पास जो फ्लीट था, फ्लीट साइज मेरा 95 से 99 व्हीकल्स का ही था, जो कि मैंने FY18 तक उसको 153 कर दिया। तो सर जो मेरा बॉटम लाइन है वो ऑब्वियसली इम्प्रूव होता है, क्योंकि मेरी एक तो डिपेंडेंसी सर खत्म हो जाती है मार्केट पे, प्लस मेरी सर्विस इम्प्रूव होती है, जिस वजह से कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है वो, और मैं सर्विस भी अच्छा दे पाता हूँ, तो वो मुझे टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन दोनों में मुझे हेल्प करता है, और फ्यूचर में भी ये करेगा। क्योंकि सर जितना मैंने इसको फाइनेंस पे लिया हुआ है व्हीकल को, तो एवरी ईयर रीपेमेंट के बाद उसका फाइनेंस जो इंटरेस्ट रहता है वो भी डिक्रीज होता जाएगा, और सर जो उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो बढ़ती जाएगी। तो प्रॉफिट का तो रीजन सर यही है, और जैसे कि हम बेसिकली वी आर सीए थे, आपको जैसे पता है, तो जो हमारा कोर कमोडिटी है वो मार्बल कमोडिटी है सर। तो मार्बल कमोडिटी में क्या हुआ सर, 2016 एंड में जो लास्ट क्वार्टर था उसमें ऐसा आया था कि मार्बल में एक पॉलिसी आई, ओपन जनरल पॉलिसी, जो मार्बल एक रेस्ट्रिक्ट कमोडिटी में था वो अभी एक ओपन जनरल पॉलिसी के अंदर आ गया, जिसका क्या हो गया, हर किसी को, जब मार्बल रेस्ट्रिक्टेड था कि आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही इम्पोर्ट कर सकते हैं आप उसको, ओजीएल आपके बाद सर ऐसा हो गया कि आप कितना भी उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो कैपेसिटी है, जो कंजप्शन है, वो 15-20 लाख टन है सर, 15-20 लाख मेट्रिक टन है। जो अभी इम्पोर्ट आ रहा था 2016 तक वो 7 लाख मेट्रिक टन तक ही आ रहा था, ऐसा है। तो अभी भी इंडिया के पास बहुत ज्यादा गैस है, और बीइंग एज अ मतलब मेरा जो कोर कमोडिटी है वो मार्बल है, तो उसकी वजह से मुझे टर्नओवर ग्रोथ भी बहुत अच्छा मिला, क्योंकि ओजीएल होने की वजह से लोग काफी ज्यादा इम्पोर्ट करने लगे।
ओके, तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आपने इंक्रीज करा अपना फ्लीट को 150 तक आप लेके गए, तो अभी भी आपकी डिपेंडेंसी दूसरे अभी भी और है, आप बाहर से उसको ले रहे हैं या अभी आपको और इंक्रीज करना पड़ेगा?
सर अभी भी मैं एक्चुअली क्या करता हूँ सर, मेरा पॉलिसी ये रहता है कि मैं 5-10% है ना थोड़ा सा मार्केट पे डिपेंडेंट रहूं, क्योंकि 100% अगर मैं अपना ले लूंगा और उसमें क्या हो जाएगा, मैं अपनी गाड़ी कभी खड़ी नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे अपनी गाड़ी को, मुझे अपनी जो फ्लीट है उसको हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखना है। तो मैं 5-10% का ये एक जो बफर है वो लेके चलता हूँ कि मेरी मार्केट पे डिपेंडेंसी रहे, क्योंकि इतना 5-10% आप इजीली अवेल कर सकते हैं मार्केट में से, रादर देन आप 20-30% में सर आप थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो आपको सर्विस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सर।
ओके ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन था मेरा ऑयल का, कि जो प्राइसेस जैसे ऑयल जा रहा है तो अपना प्रॉफिटेबिलिटी हिट करेगा आने वाले टाइम के लिए, तो कंपनी क्या हेज कर रहे हैं उसके लिए?
सर इसमें ऐसा होता है, जैसे मेरा आज मेरा किसी कस्टमर के साथ हमारा शिपमेंट टू शिपमेंट बेसिस काम चलता है सर, मैंने जैसे आज किसी कस्टमर को कोड दे दिया ट्रांसपोर्टेशन का, और आज मेरा रेट अगर 55 है तो वो थ्रू आउट द वीक के लिए या थ्रू आउट द शिपमेंट के लिए वो रेट लॉक हो जाता है। अब जो नेक्स्ट शिपमेंट आएगा उस टाइम पे जो रेट होगा उस हिसाब से सर रेट जाता है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री सर टोटली इस पे डिपेंड करता है, जो आपका फ्रेट जिस डेट पे होता है, जो आप अवेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सामने डिलीवर करना है। इसमें क्या होता है सर, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में ये बेनिफिट है कि अपना जो प्रॉफिट है वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि रेट बढ़ रहे हैं ऑयल और ये सब फ्यूल्स वगैरह के, तो उसमें चांसेस ये भी है सर कि मैं भी अपने प्राइसेस बढ़ाऊंगा, अपने कस्टमर को बोलूंगा कि प्राइस बढ़ रहा है, तो वो अल्टीमेटली आपको इम्पैक्ट करेगा, तो वो रिकवरेबल है क्लाइंट में से रहता है।
ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है
जी सर,
ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
थैंक यू सो मच।
थैंक यू। The next question is from the line of Vineet Kala from Pantomath. Please go ahead.
Sir, congratulations on a good set of numbers. Sir, मुझे समझना था कि आप अगर मुझे किलोमीटर वाइज ब्रेकअप दे के आपको किलोमीटर वाइज ट्रकिंग बिजनेस में आप कितना चार्ज करते हो और आपके कॉस्टिंग कैसे बैठती है?
जैसे किलोमीटर वाइज हम लोग चार्ज करते हैं वो लोकेशन वाइज होता है और कमोडिटी वाइज होता है, डिफरेंट लोकेशन का डिफरेंट प्राइसिंग रहता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग उसका जो ट्रिप का है वो फिक्स होता है जो अमाउंट है। और मुझे बेनिफिट क्या है विनीत, कि मेरा जो बिजनेस है वो इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट है, तो मुझे टू एंड फ्रो दोनों का बिजनेस मेरे पास है ऑलरेडी। तो जो व्हीकल मेरा यहाँ से कंटेनर लेके जाता है वही वहां से खाली करके और स्टफ करके भी आता है एक्सपोर्ट के लिए।
ओके,
तो मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मेरा एफिशिएंसी है, वो ज्यादा बढ़ जाता है दोनों तरफ का मूवमेंट होने की वजह से।
ओके
हाँ
सर, बट ऐसे मतलब एक कंसोलिडेटेड बेसिस में हम लोग का कितना होगा से पर किलोमीटर, इफ आई एम चार्जिंग से 100 रुपीज, तो मेरा कॉस्ट ब्रेकअप कितना होगा सर उसमें, मतलब परसेंटेज वाइज? रिपेयर का, टायर्स का?
हम लोग कैसे करते हैं, जैसे जो हम लोग है ना पर मेट्रिक टन के, एक सेकेंड आपको हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जरा एक्सप्लेन करेंगे ये पॉइंट।
ओके
गुड इवनिंग।
हाय सर,
कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज?
सर बेसिकली आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि पर किलोमीटर और पर ट्रिप वाइज आप कैसे भी कैलकुलेट करो, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ माय ट्रकिंग बिजनेस।
जो ट्रकिंग बिजनेस है ना ऊपर किलोमीटर का अकॉर्डिंग होता है, ऊपर ट्रिप वाइज होता है, ठीक है?
ओके सर, पर ट्रिप वाइज,
पर ट्रिप एंड पर डे बेसिस होता है। एवरी जो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टर है उनका सबका एक थंब रूल कैलकुलेशन होता है कि हमारी गाड़ी पर डे जो है 5,500 मैक्सिमम 6,500 तक छोड़ना चाहिए, ऐसा एक ये थंब रूल है ट्रांसपोर्ट को चलाने का, गाड़ियों को चलाने का। मतलब जैसे गाड़ी मेरी आज 250 ट्रक है, तो 153 ट्रक जो है उनका ऐसा होता है कि कभी जिस दिनों खड़ी है मतलब वो 5,500 रुपए के लॉस में है, ओके? तो इसमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस में पर किलोमीटर कभी कोई कॉस्ट नहीं निकलती, पर ट्रिप होती है एंड पर डे होता है।
ओके सर, सो लेट्स टेक इट पर ट्रिप। सो उसका कॉस्ट ब्रेकअप क्या होगा, मतलब रेवेन्यू साइड में समझ गया, बट कॉस्ट ब्रेकअप व्हाट, हाउ वुड दैट लुक लाइक इफ आई टू टेक माय फ्यूल कॉस्ट, माय रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एवरीथिंग पुट टुगेदर इंक्लूडिंग माय इंटरेस्ट कॉस्ट?
हाँ मैं आपको बता रहा हूँ सर, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट और ईएमआई तो सेपरेट होता है, लेकिन गाड़ी जो पर डे चलती है ना, पर डे में ईएमआई और इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं आफ्टर जो गाड़ी का ट्रिप एक्सपेंस माइनस करने के बाद।
करेक्ट,
करने के बाद फॉर एग्जाम्पल गाड़ी मुंद्रा से लोड हो रही है और उदयपुर जा रही है और उदयपुर से रिटर्न आ रही है, ट्रिप इज 6 डेज, ठीक है ना? अब उसका अप डाउन का खर्चा 51,000 है। मैं आपको इसे बताया क्योंकि गाड़ी एवरी डे एवरी मिनट का मूव वहां का रहता है, ठीक है ना? तो अब 51,000 उसका अप डाउन फ्यूल टोल टैक्स एंड ड्राइवर एक्सपेंस सारी कॉस्ट को मिलाकर 51,000 आता है। अब 51,000 अगर 6 डे है, दैट मीन्स 5,500 उसके ऊपर टॉप ऑफ मीन करीबन 35,000 रुपए दूसरा जो कॉस्ट है गाड़ी को मिलना चाहिए, तो ही वो गाड़ी जो है प्रॉफिट की ट्रिप कर रही है, नहीं तो प्रॉफिट की ट्रिप नहीं कर रही है।
ओके
होता सर।
सर सो इसमें मतलब आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली रिपेयर्स और एक्सपेंसेस उसमें कितना जाता है, और मतलब मेरे टायर रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस कितना जाता है इफ आई जस्ट टेक इट ऑन कंट्रोल बेसिस?
जो टायर देखो, जो गाड़ी के जो एसेट्स हैं लाइक जो टायर हैं या उसके जो अदर स्पेयर पार्ट, उनका एक किलोमीटर होता है। जैसे एग्जांपल आज मेरी गाड़ी ली, उसमें मैंने पूरे सारे नए टायर डाल दिए, तो वो 80,000 से 1,00,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है वो रन करता न्यू टायर। तो नॉर्मली जो इंडस्ट्री का लिया जाता है कि जो भी गाड़ी है गाड़ी की जो पर किलोमीटर की मेंटेनेंस कॉस्ट आनी चाहिए वो मिनिमम 0.10 पर किलोमीटर एंड मैक्सिमम 14 तक चलता है, तो आपकी ट्रक जो है वायबिलिटी प्रॉपर चल रही है। मतलब काफी इफन बट है, काफी सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स इतना डिस्कस करने पर काफी टाइम चला जाएगा। एंड देन उसके बाद जब ये 1,80,000 से 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद ये अगेन टायर निकलता है और रिमोल्ड किया जाता है, रिमोल्ड होने के बाद 20 से 25,000 किलोमीटर फिर से चलने देता है। मतलब एक टायर मोरलेस 1,20,000 से 1,30,000 किलोमीटर की सर्विस देता है वाइल न्यू एंड रिमोल्ड।
करेक्ट,
ओके
ओके सर। सो ये मतलब ईयर ऑन ईयर, मतलब आई वाज जस्ट लुकिंग एट द अदर एक्सपेंस, सो वो टायर का एक्सपेंस बहुत हेवी लग रहा था, दैट्स व्हाई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो वो दैट विल बी इन लाइन विथ माय हाउ मेनी फ्लीट्स आई हैव, राइट? सो वो उतना बढ़ते ही रहेगा हमेशा, और दिस ईयर मतलब द जंप वाज समथिंग वेरी अब्रप्ट।
उसी प्रपोर्शन में बढ़ता रहेगा और अपना को मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हमको कंट्रोल करके चलना है।
ओके, और सर सेकंड थिंग, आपका जो शिपिंग लाइंस के साथ कोई नया टाइप कुछ अनाउंस मतलब आपको मिला है ड्यूरिंग द ईयर और आफ्टर लिस्टिंग और समथिंग?
इम्पोर्ट है, हमने एमएससी को बोला है कि हम आपको 9,400 कंटेनर देंगे एंड 9,400 अलग अलग करके रखा है, आपको हम इतने कंटेनर देंगे, हमको आपको ये रेट देना है, तो उस हिसाब से रेट फीडअप कंटेनर फीडअप एंड स्पेस
फिट अप करते हैं हमको स्पेस में, किस के ऊपर स्पेस देते हैं लोडिंग के लिए।
ओके ठीक है सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ आयुष मित्तल फ्रॉम मित्तल एंड कंपनी, प्लीज गो अहेड।
सर योगान जसवानी है, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो सर जैसे कि आप एक समझा रहे थे कि आप 5-10% ऑफ योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है आप मार्केट से सोर्स करते हैं, तो बेसिकली अगर हम जैसे अपना 150 फ्लीट की बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा 80-90% यूटिलाइज रहता है।
हमारा जो यूटिलाइज है, जो हमारा यूटिलाइज है हमारे ट्रक का 153 का, उनको यूटिलाइज करने के बाद एवरी डे जो मेरा पोर्ट है, ऑल पोर्ट खंडला मुंद्रा इपावा एंड हजीरा एज वेल एज ओके मोर लेस जो है 10-25% कार्गो हमारे पास सरप्लस रहता है। सरप्लस रहता है मुंद्रा से, मतलब पोर्ट से डिलीवरी के लिए एंड पोर्ट से पिकअप करके लाने के लिए एक्सपोर्ट भी सेम सिचुएशन में रहता है मोर लेस।
ओके
क्योंकि हम लोग सर आपके साथ होता है कि हम लोग 3PL है और 3PL में जब तक कि आपके पास में इम्पोर्ट नहीं है और एक्सपोर्ट नहीं है आप 3PL बनी नहीं सकते हैं।
जी नहीं तो सर मेरा बेसिक क्वेश्चन आपसे ये था, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग एक इसमें यूटिलाइजेशन या यील्ड देखते होंगे एफिशिएंसी के लिए, तो अगर अब जैसे हम लोग इतने आगे एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, जैसे 150 के पास फ्लीट है, जो नंबर्स हम लोग ने जो शुरुआत में प्रोजेक्शन बताए कि हम एबिटा 40 करोड़ ले आएंगे या इस तरीके के जो नंबर्स हमने दिए, तो इस सबको अचीव करने के लिए क्या हमें और फ्लीट की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी तो किस लेवल तक हमारा इन्वेस्टमेंट होगा इस साल का केपेक्स, बेसिकली आप कितना पैसा और डालना पड़ेगा आपको इसको, और उसके लिए डेट क्या रहेगा कितना, क्योंकि आपने इधर प्रॉफिट भी अच्छा कमाया तो कितना इंटरनल होगा कितना डेट से होगा?
ठीक है, गुड इवनिंग ब्रदर, दिस इज योर आई थिंक अकाउंटिंग क्वेश्चन, माय सीईओ विल रिप्लाई राइट नाउ।
यस सर आपका जो क्वेश्चन है सर, जो हम लोग फ्यूचर प्रोजेक्शन दे रहे हैं उसके लिए आप बात कर रहे हैं, तो सर अभी तो जो है ना मेरा 153 व्हीकल्स है, जो आपने बोला ना 80-90% ऑक्युपाइड रहता है, वैसा नहीं है सर, मेरा 100% अपनी व्हीकल्स का यूटिलाइजेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट 5-10% सर मेरा मार्केट से हायर करने का रहता है, जो कि मैंने आपको बताया हम लोग वो बफर लेके चलते हैं, 5-10% मैं मार्केट पे डिपेंडेंट रहता हूँ, क्योंकि सर मेरे पास कार्गो ऑलरेडी पेंडेंसी रहती है मेरे पास कार्गो की। तो मेरी गाड़ियां जैसे कभी खड़ी नहीं रहे, मैंने आपको बताया 100% यूटिलाइज है, हमेशा रोड पे चलती रहे, क्योंकि सर खड़ी गाड़ी जो कमाई हुई गाड़ी है उसका भी इनकम लेके जाती है, तो इसीलिए सर मेरा जो बिजनेस पॉलिसी मेरे पास पेंडेंसी रहती है, मैं गाड़ियां उस हिसाब से ही लेता हूँ, उस हिसाब से ही प्लान करता हूँ। अभी सर फ्यूचर में अगर मेरा प्रोजेक्शन है 430 करोड़ जाने का और मैं कोई नई ऐड कर रहा हूँ, मुझे नीड लग रही है 10-15 व्हीकल और ऐड करने की, तो मैं ऐड करूंगा सर, उसमें वो बिजनेस डिमांडिंग है तो वो डिमांड उसकी मैं फुलफिल करूंगा, ऐसा है। और सर जो इसका अभी आप बोल रहे हैं कि इसमें क्या बढ़ेगा, कॉस्टिंग वगैरह कैसे बढ़ेगा, जैसे मेरे इंटरनल अप्रूवल्स में मेरा प्रॉफिट वगैरह अच्छा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस अच्छे हैं मेरे, तो सर हम लोग क्या करेंगे कि 25% जो मार्जिन लेना होता है वो हम बुक्स में से लेंगे, बाकी वी विल डेट फ्रॉम मार्केट, वी विल टेक डेट फ्रॉम मार्केट, मतलब ऐसे फाइनेंस पे ले लूंगा सर मैं, क्योंकि फाइनेंस नाउअडेज आप देख रहे हैं कि बहुत इजीली अवेलेबल है गाड़ियों के लिए, जो कि 8.5-9.5% पे आपको मिल जाता है, ऐसा है।
तो सर बेसिकली मैं आपसे इसलिए सवाल पूछा था, जैसे अभी हम लोग 250-300 करोड़ के रन रेट पे हैं।
सर एक्चुअली आपका वॉइस लो आ रहा
है, एक सेकंड, हेलो बेटर है सर?
हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं?
मैं कह रहा हूँ जैसे अभी हमारा सेल्स का रन रेट अगर जो 300-350 करोड़ है, अगर यहाँ से हम 425 करोड़ पे ले जाते हैं, तो ऑलमोस्ट हम 50% अपना सेल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आपने ऐसा समझाया कि हमारा यूटिलाइजेशन अच्छा चल रहा है इस समय फ्लीट का, तो ऑब्वियसली अगर हमें यहाँ से 50% ग्रो करना है तो एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पे हमारे पास ट्रक होगी तब माल डालेंगे तब ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये बहुत लीनियर टाइप का बिजनेस हुआ कि इतना केपेक्स करना पड़ेगा तभी आपके पास उतनी कैपेसिटी आएगी जिसको आप आगे रेवेन्यू से जनरेट करोगे। तो
सर मेरा बिजनेस पॉलिसी क्या है, मुझे अच्छा सर्विस देना है इसीलिए मैं ट्रक ले रहा हूँ, मुझे ट्रक चलाना है इसीलिए मैं ट्रक नहीं ले रहा हूँ, ट्रक चलाना हेडेक लेना सर किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे जो सर्विस देना है, मुझे जो प्रॉफिट कमाना है, मुझे जिस लेवल पे जाना है उस हिसाब से मुझे उतना डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्लीट का रखना पड़ता है सर। अभी जैसे मेरा बिजनेस आप बोल रहे हैं कि मैं 35% जो और ग्रो करने की बात कर रहा हूँ सर, उसमें ऐसा होगा डिपेंड करेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया 5 से 10% मैं मार्केट से हायर कर रहा हूँ, तो हो सकता है सर मुझे मेरी फ्रीट साइज जो है वो 15-20 व्हीकल्स बढ़ानी भी पड़ेगी, ऐसा है, टू गिव द बेटर सर्विसेज, नॉट सर के मुझे अपनी कंपनी में असेट्स बढ़ानी है, मुझे अपनी कंपनी में गाड़ियां बढ़ानी है। क्योंकि सर सिर्फ गाड़ियां बढ़ाने से क्या होता है, सिर्फ नुकसान नहीं हो, उसके प्रॉफिट्स भी बहुत हैं, आपका बॉटम लाइन बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है, मेन आप सर्विस भी अच्छी दे पाते हैं। अभी सर मुझे क्या है, जैसे मुझे आज 50 व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है पर मार्केट में 30 व्हीकल्स ही अवेलेबल है, तो 20 व्हीकल्स का जो मेरा पेंडेंसी और बढ़ जाएगा, जो मेरे पास काम है और जिस वजह से मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो वो मेरे लिए सर एक सर्विस बैरियर बन जाता है कि मैं वो सर्विस नहीं दे पाता हूँ, ऐसा है। तो जो व्हीकल साइमल्टेनियसली बढ़ाने का रीजन है वो यही है सर कि कार्गो जितना है उतना आपके पास साइमल्टेनियसली व्हीकल भी हो तो आप अच्छा सर्विस दे पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे।
ओके ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें जैसे अपना डेप्रिसिएशन में देख रहा था, हम लोग करीब 8-9 करोड़ का डालते हैं 35-40 करोड़ के फिक्स एसेट पे, तो डेप्रिसिएशन क्या रहता है सर, कितना रहेगा, जिसमें गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है?
सर एज पर कंपनीज एक्ट जो अपने रहता है व्हीकल्स पे, अपन बुक लेके ऐसा रहता है।
हेलो जी सर, क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी।
हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ जो डेप्रिसिएशन रेट एज पर कंपनीज एक्ट रहता है वो अपन लेते हैं, तो ये जो 8-9 करोड़ आप देख रहे हैं ये मेरा टोटली फ्लीट साइज के ऊपर ही है, जो मेरी 150 गाड़ियां हैं उसके ऊपर ही ये आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है सर।
ओके अंडरस्टूड सर। सर लास्टली एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसे MD सर समझा रहे थे कि हम डोर टू डोर डिलीवरी दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कार्गो और वी आर एक्चुअल 3P प्लेयर्स, तो इस सब टाइप की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी या लॉट ऑफ इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ हमारा कि हमारा हम कितने लेवल्स पे अवेलेबल है कस्टमर्स के पास, टच बेस पॉइंट्स वगैरह, तो इन सब पे हमारा सिस्टम या प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर?
डेफिनेटली सर, मैं हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको बोलता हूँ, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे।
जी
थैंक यू सर।
जी सर, सर मैं जैसे आप समझा रहे थे कि हम लोग डोर टू डोर डिलीवरी देते हैं अपने कस्टमर्स को और हम एक्चुअल 3P प्लेयर्स हैं, तो ये सब जो टाइमली डिलीवरी देते हैं इन सब के लिए कहीं ना कहीं सर्विस हमारी बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए, और आज की डेट में ये सारी चीजें लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं या हमारे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगी उसमें जो हमारे टच पॉइंट्स रहेंगे, तो आप कैसे कर रहे हैं उसको, आप ये कैसे इतना स्ट्रीमलाइन और इतना एफिशिएंटली कर रहे हैं, आपके यहाँ प्रोसेस क्या है?
ETL में जो फर्स्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपके ओवरसीज पार्टनर होने चाहिए, ठीक है, वो हमारे ऑलरेडी 32+ new 65 कंट्री के पार्टनर थे एंड वो वहाँ पे खुद जो 3PL सर्विस प्रोवाइडर हैं, वहाँ पे ऑलरेडी वो फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, कस्टम हाउस एजेंट हैं एंड ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, तो वो खुद वहाँ एफिशिएंट हैं। इंडिया में जैसे हम लोग हैं उनके पार्टनर जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी हम खुद ट्रांसपोर्टर हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, कस्टम हाउस एजेंट हैं एंड जो हमारी गाड़ियां हैं उसमें फुली GPS लोडेड हैं, तो जैसे गाड़ी मुंद्रा से निकलती है हम कस्टमर को हमारा ईमेल के सिस्टम से जो है हमारा जो सॉफ्टवेयर है जो हमारा ASL का जो ERP है उसके थ्रू पूरा मेल शूट हो जाता है कि भाई आपके ये 15 कंटेनर का मटेरियल है, चाहे वो कोयल हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे प्लेट हो या चाहे वो एक्सपर्ट कमोडिटी हो, आपका निकला है और ये हमारी गाड़ी है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं GPS के थ्रू। बाकी आज की दिन पर टेक्नोलॉजी जो है ऑलरेडी व्हाट्सएप कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं, ग्रुप बन बन के इतना बढ़िया कम्युनिकेशन हो गया कि ऑलमोस्ट ईमेल कम्युनिकेशन आई डोंट थिंक आज आदमी 100% ईमेल कम्युनिकेशन करता है, 30-40% व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर जाता है।
ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह मैं देख रहा था, जैसे एक हम लोग ARS करके कंपनी, उसे 3-3.5 करोड़ का ट्रेलर लिया, इसी तरीके से और भी ढेर सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें क्या हो रहा है इसमें, क्या है
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस?
हाँ सर, तो जो आप रिलेटेड ट्रांजेक्शन पार्टी की बात कर रहे हैं सर, उसमें ऐसा है एक यूनिट है हमारा सर ARS इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें क्या है बेसिकली ट्रोली मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है सर, वो कंपनी ट्रोली मैन्युफैक्चरर है, ऐसा है, तो वो हमारा एक सेपरेट यूनिट है जिससे हम एक्यूरेसी की जो भी हम गाड़ियां लेते हैं उसकी ट्रोलियां हम वहां पे बनाते हैं सर, ऐसा है, और एज वेल एज वो सिर्फ एक्यूरेसी के लिए नहीं बनाता है, वो मार्केट के लिए भी ट्रॉलीज बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो साथ ही साथ एक्यूरेसी की भी वही बनती है। उससे क्या होता है, एक्यूरेसी के लिए वो चीज कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है सर।
ओके, तो सर मेंटेनेंस वगैरह भी उसी पे उसी के थ्रू हो रहा है हमारा?
मेंटेनेंस वगैरह जो ट्रोली का है वो वहीं पे ही होता है। मेरे व्हीकल्स का जो है, जो मेरे हॉर्स का है, वो पूरा एएसएल का वर्कशॉप है खुद का, वो वहीं पे होता है। इन हाउस वर्कशॉप है, इन हाउस मैकेनिक है, इन हाउस सुपरवाइजर है, वो उस पे होता है। और एवरी ट्रिप सर मेरी गाड़ी अंडर मेंटेनेंस, मतलब अंडर रिकॉर्ड होती है, उसको देखा जाता है, उसका पूरा टेक्निकल जो भी है डिपार्टमेंट हमारा ट्रांसपोर्ट का, वो पूरा उसको एनालाइज करते हैं एवरी ट्रिप पे सर। तो एवरी ट्रिप पे क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसी को पकड़ के जल्दी सॉल्यूशन में ला सकते हैं। अगर वो ऑन द वे में कुछ दिक्कत आ जाती है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो इसीलिए जो वर्कशॉप है वो एएसएल का खुद का ही है, इन हाउस है, और वहीं पे ही सब जो भी है चेकिंग वगैरह होता है।
अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर एंड बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ वरिंदर फ्रॉम पैंटोमैथ, प्लीज गो अहेड।
सर टू और थ्री क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आपका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है हैज बीन गुड इन द लास्ट फ्यू इयर्स। आपका 30-35 दिन का 30-35 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल रहता है। सो वन फेयर इज दैट गोइंग अहेड, अभी पैसे आईपीओ से आ गए हैं और नए नए कस्टमर्स अगर ऐड करने हमें, सो हाउ मच फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड वी विल बी कि हम लोग वो अपना कैश कन्वर्जन साइकिल हम किस लिमिट तक रखेंगे। सो इन ऑर्डर टू ग्रो द बिजनेस, कई बार देखा है कुछ लॉजिस्टिक्स कंपनीज कि अपना कैश कन्वर्जन साइकिल को एक्सपेंड कर देती हैं एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो आपका इंटरनल कुछ ऐसा फ्रेमवर्क है कि आपको क्या फाइनेंशियल डिसिप्लिन या टारगेट रखना है इन टर्म्स ऑफ दिस सीसीसी कैश कन्वर्जन साइकिल?
सर इसमें ऐसा है, आप देख सकते हैं सर मेरा जो डेटर डेज है सर, आप अगर मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं जैसे टाइगर लॉजिस्टिक्स मैश्वरी ले लीजिए, तो उन सबका ऑलमोस्ट हाफ है मेरा डेटर डेज। तो जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है सर वो ऑलरेडी कंपनी में है। ये जो वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा हमको अवेल हुआ है थ्रू आईपीओ फंड, उसमें सर वो क्या है, एडिशनल कमोडिटीज बढ़ाने के लिए है, ना कि सर जो एग्जिस्टिंग मेरे क्लाइंट थे उनको कंफर्ट जोन में रखने के लिए कि नहीं आप 30 डेज तक क्रेडिट ले रहे थे, अभी आप मेरे पास, मेरा आईपीओ आ गया, मेरे पास बहुत पैसा है, आप सीसी यूज करो, 60 दिन के लिए यूज करो, एक काम करो। तो सर मेरा पर्पज वो नहीं है कि मेरे क्लाइंट को कंफर्ट जोन में लेके जाना है। जो मेरा डेज चल रहे हैं मुझे उसको उतने पे ही रखना है, मुझे उसको बढ़ाना नहीं है, मुझे बढ़ाना है बिजनेस बढ़ाना है, मुझे जो कमोडिटीज ऐड करनी है सर, जो पर्पज है फंड का वो ये है कि बिजनेस ग्रोथ करनी है, ना कि डेटर डेज बढ़ाना है सर। अगर वो बढ़ेगा भी तो वो सर्टन 5-10% की लिमिट में बढ़ेगा सर, बाकी और कोई रीजन नहीं होगा डेटर डेज बढ़ने का।
10% 5-10% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, राइट?
नहीं सर।
ओके ओके। सेकंड क्वेश्चन इज सर कि कुछ लिस्टेड लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग इन द पास्ट, यू नो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑफकोर्स द बिजनेस मॉडल जिसे आप समझा रहे हो कि यू नो इज नॉट कंपेरेबल, बट फिर भी गति हुआ, ऑल कार्गो हुआ, जो बड़ी कंपनीज हैं इनको उनके मार्जिन नीचे आ रहे हैं, जीएसटी इम्पैक्ट कर रहे हैं उनको, सीएफएस बिजनेस का अच्छा नहीं चल रहा। सो आपका कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है सर कि आपका, बिकॉज लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर है जैसे जिसमें कैपिटल इंटेंसिव है, सो वाई आर यू सो कॉन्फिडेंट कि आपका वो 40-50% ग्रोथ जो है, 30-35% ग्रोथ जो आपने टॉप लाइन पे बोला, इज पॉसिबल?
सर पहली चीज तो ये है सर, जो कि इन हाउस सारी फैसिलिटीज है या नहीं है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लॉजिस्टिक सेक्टर में, ठीक है। और सर लॉजिस्टिक सेक्टर कैसा है ना कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है, लॉजिस्टिक्स मतलब ऐसा है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक्स इट इज ग्लोबल, हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा ही होगा सर। लोग खाना खाएंगे, लोग कपड़े पहनेंगे, घर में मार्बल लगेगा, टाइल्स लगेगा, फर्नीचर आएगा, सब कुछ होगा, गाड़ियां आएंगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता है कितना बूम हो रहा है, उस वजह से लॉजिस्टिक सेक्टर तो सर हमेशा ही प्रॉफिट में रन करेगा, ठीक है। रही बात गति की और जो भी आप बोल रहे हैं ऑल कार्गो जो भी है, वैसे वो कंपेरेबल नहीं है मेरे साइज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग, बट अगर आप कंपेयर कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ सर, उनका एक रीजन भी है कि वो एक ओवर एक्सपांशन में चले गए सर। मेरा क्या है, आप मेरा देखेंगे तो मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट था, उसके बावजूद मैं इतना टर्नओवर कर रहा था, जबकि मेरा 30 करोड़ का रिक्वायरमेंट था तो मैं 18 करोड़ में इतना टर्नओवर कर रहा था। तो सर मैं वो देखता हूँ कि मेरे पास कितना है और मैं कितना दे सकता हूँ, और वो लोगों के ऊपर डेट इतना है कि उन लोगों ने अपने डेटर डेज बढ़ा दिए, अपना डेट बढ़ते गए उनके, उन्होंने ओवर एक्सपेंशन कर दिया, तो जो उनको सफरिंग हुई, जो उन्होंने, जो आप बोल रहे हैं कि उनको दिक्कत आई थी, वो दिक्कत आने का रीजन सर ये भी होता है आपको बिजनेस कैसे चलाना है वो आपके हाथ में सर। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, वो होना बहुत जरूरी है। सर मेरा डेटर डेज उनसे हाफ चल रहा है, 49, 40 डेज, 45 डेज, 35 डेज, वो भी सर ऐसा होता है कितनी बार कि 25 डेज 20 डेज में भी पैसा रिकवर हो जाता है।
बोलो सर, अपना जो डेटर डेज है वो कभी भी 50, 45 या 50 दिन से ऊपर नहीं जाएगा, राइट?
नहीं जाएगा सर। मैंने आपको बताया ना, मैंने वर्किंग कैपिटल, मैंने फंड रेज उनके लिए नहीं किए हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने फंड रेज किया है मेरी प्रमोट करने के लिए, उनको मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मेरी बिजनेस ग्रोथ करने के लिए।
सर लास्ट क्वेश्चन सर मेरी तरफ से, कि जैसे पहले भी पूछा वन ऑफ द एनालिस्ट ऑल्सो आस्क्ड यू नो कि आपकी कुछ कंपनीज हैं जो बाहर हैं, यू नो ERS हुआ या कुछ और कंपनीज हैं, सो इज देयर एनी पॉसिबल थिंकिंग ऑन दोज कंपनीज, बिकॉज वो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन माइंड में इन्वेस्टर्स के आते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटर ट्रांजेक्शन व्हिच आर हैपनिंग अ नॉट।
बिल्कुल सर, एक्चुअली उस पे एक थॉट चल रहा है मैनेजमेंट का, एक डिस्कशन पॉइंट है कि सारी कंपनीज को एक ही अम्ब्रेला के नीचे लेके आया जाए, तो वो एक डिस्कशन पॉइंट है सर कि एक्यूरेसी के अंदर ही सारी कंपनीज, एक्यूरेसी में ही जो काम है वो सारा एक्यूरेसी में ही हो सिंगल कंपनी में, तो वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सर मैनेजमेंट में जो चल रहा है।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऑफ कोर्स।
थैंक यू। Participants who would like to ask questions, please press star, then one. Participants to ask a question, please press star, then one.
Stanford, if there are no further questions, let us end this call for today. Thank you very much, Vinayji. And thank you very much, Hiren, for answering all the questions.
Thank you,
ladies and gentlemen.
Thank you, ma'am. Have a good day. Thanks.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, on behalf of Accuracy Shipping Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.